one of the greatest gifts a leader can be to his community. One of the greatest gifts a leader can be to his community.
एक अगुआ अपने समाज के लिए एक बड़ी आशीष हो सकता है. और जब वो उस समय के लिए परमेश्वर जो उसको वचन दे रहा है वो अपने समाज को देते हुए और मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है देखते हुए जो कॉलिन ने अभी किया और जो फ्रैंको कर रहा है. परमेश्वर जो कर रहा है उस भविष्यवाणी को जो अगुए है भाप लेते हैं, उसको उठाते हैं और उसको लेकर हम हमारे समाजों में उसकी मालिश करते हैं. तो ये जो वचन है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है,
सिर्फ जो मुख्य अगुए
उनके लिए नहीं है लेकिन जो माता पिता और सभी के लिए हैं ये जो हम ले रहे हैं समय, ताकि हम सब परमेश्वर के समय को समझ सके और उसको समझते हुए जो हम अगुवाई कर रहे हैं उसको में हम बदलाव ला सके. और एक वचन है जो इसकार के बेटों के बारे में बात करता है. और बाइबल कहता है कि उन्होंने जिस समय में वो जी रहे थे उनको समझा. और वो शाऊल का जो गोत्र था उस वहां उसमें से आए थे. लेकिन वो समझ गए थे कि परमेश्वर का अभिषेक अब शाऊल से हटकर दाऊद पर आ गया है. वो उन समयों को समझ गए थे. फिर उसने उन्होंने अपने सारे समूह को दाऊद की तरफ ले गए और कहा कि दाऊद हम तेरे साथ हैं अब.
And I must be honest, what breaks my heart sometimes.
कभी कभी मेरा दिल बहुत टूटता है इस बात से.
When I think God is speaking to us so clearly as a movement.
जब परमेश्वर हम सब से इतना स्पष्टता से बात करता है.
And then I hear that churches are teaching something that's quite at a different tangent at the moment.
और फिर मैं सुनता हूँ कि कोई कलीसिया है जो कुछ और ही सिखा रही है जो प्रभु बात कर रहा है उससे हटके.
Obviously the autonomy of elders, you've got to decide what you teach. It's not just what should I teach this Lord, you know, or what's the latest thing I've seen on God Channel or whatever.
और आप अपनी कलीसिया के अगुए हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आपको क्या सिखाना है कलीसिया में.
You've got to guide your people through teaching and through the prophetic voice of God, and you lead them through a combination of the two.
लेकिन आपको परमेश्वर को जो बात कर रहा है उसको लेकर उसमें अपने लोगों की अगुवाई करना बहुत जरूरी है.
Very very clear minded before God in the spirit of what you actually teach on a Sunday and how you lead your church.
तो कैसे आप संडे को रविवार को सिखाते हैं कलीसिया की अगुवाई करते हैं उसके लिए परमेश्वर के सामने आपको स्पष्ट होना बहुत जरूरी है.
How you take a statement like that and you teach it into the church.
अब ऐसे वाक्य जो यहाँ पर है इसको लेकर अपनी कलीसिया में कैसे सिखाओगे आप?
Even worship leaders, as you lead, you know, the songs, think of what God's doing and then you bring it in.
तो कलीसी आराधना के अगुवेज भी जो हैं, आपको देखना है परमेश्वर क्या जो बात कर रहा है इन दिनों में उस चीज को लेकर अगुवाई करनी है.
And for we as leaders, our role is to keep massaging in. I think as Colin just said, now we massage in, we put it, has he got it?
और हम जो अगुए हमको लगातार मालिश करनी होती है लगातार कि क्या वो पा लिया है उन्होंने इस
has the word got hold of him that it changes how he lives his life?
कि वचन जो है क्या उसने पकड़ लिया है अंदर और क्या वो उसकी उनकी जिंदगी को बदल रहा है.
So be encouraged.
तो उत्साहित हो जाइए.
We're going to now follow a series of teaching over the rest of the time we're together.
और बाकी के समय में हम एक शिक्षा की श्रृंखला को देखेंगे.
And hopefully, have we got notes yet? Not yet. Can we dish them out? Okay, make sure everybody gets notes. I was very impressed that I just sent them through, hoping that everybody would get them at some stage. But it seems they've not only been printed but translated by none other than Gurmeet. Absolutely amazing. I mean, to be honest with you, I mean, the incredible thing for me was to see these notes in Hindi this morning or yesterday, because many years ago I asked God for the nations.
और मेरे लिए बहुत अद्भुत बात है इन नोट्स को हिंदी में देखना, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने परमेश्वर से राष्ट्र मांगे थे.
Very humbling. It's wonderful. Okay, I've called them island lessons.
और मैंने उनको टापू के सबक कहा है.
Okay, island lessons. If you're looking for a title,
और टापू के सबक, टापू के पाठ.
Franco has also got. You want to take that one? Franco has also got the electronic copies. So if you want these later, you can do that.
और योगेश के पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज है, यानी अगर आप ईमेल से चाहते हैं तो वो आपको भेज देंगे.
ओके, सो जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू.
तो कुछ बातें मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा.
व्हेन इट बिकेम पॉसिबल फॉर मी टू कम एंड हैव दीज फ्यू डेज इन इंडिया,
और जब मेरे लिए ये संभव हो सका कि मैं भारत में आके कुछ ये समय बिताऊं.
एंड लेट मी जस्ट से माय एब्सेंस फ्रॉम इंडिया और माय लैक ऑफ रेगुलरिटी इज नॉट बिकॉज़ आई डोंट लव इंडिया.
और क्योंकि मैं जब भारत में नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भारत से प्यार नहीं करता.
बिकॉज वी नाउ हैव यू.
वो इसलिए है क्योंकि अब हमारे पास आप लोग हो.
यू नाउ कैरिंग द बर्डन फॉर इंडिया एज़ आई डू इन प्रेयर.
और आप अभी भारत का काफी भार उठा रहे हो प्रार्थना में भी.
एंड सो दैट अलाउज मी टू डू अदर थिंग्स.
तो इसीलिए अब मैं दूसरे काम भी कर सकता हूं.
द लेस यू सी मी द मोर इफेक्टिव वी आर बिकमिंग इन द गॉस्पेल.
तो जितना आप मुझे कम देखोगे इसका मतलब है कि हम ज्यादा समाचार में तरक्की कर रहे हैं.
इट्स क्रेजी इज़न्ट इट. पॉल रोट टू हिज डियर सन टाइटस.
पॉलुस ने अपने प्यारे बेटे तितुस को लिखा.
एंड इन आवर स्क्रिप्चर्स दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द पास्टोरल लेटर्स.
और शास्त्र में ये एक पासबानी चिट्ठी.
पास्टोरल लेटर्स. पासबानी. ओके, इट्स अ पास्टोरल लेटर एंड इट्स रिटन टू अ यंग मैन हुज बीन इंट्रस्टेड विद अ टास्क.
एक ऐसे नौजवान को ये लिखा गया था जिसको एक काम सौंपा गया था.
बट व्हाट यू गॉट टू रिमेंबर दैट व्हेन टाइटस रिसीव्ड दिस.
जब टिटस को ये मिला,
इट वुड हैव बीन रिटन ऑन सम वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ चार्ट पेपर और स्किन और व्हाटएवर दे यूज्ड.
और उस समय में जिस तरीके से वो लिखते थे शायद किसी चमड़े के टुकड़े पे, उस तरीके से लिखा गया होगा.
एंड इट वुड हैव बीन वेरी रिलेशनल.
और ये बहुत ही संबंधित तौर पे लिखा गया था.
चैप्टर्स और नंबर्स.
और जो अध्याय है पाठ एक दो ऐसा नहीं था.
It was a spiritual father helping his son succeed.
एक आत्मिक पिता अपने बेटे की सफलता के लिए ये लिख रहा था उसको चिट्ठी.
And this letter was most probably written right near the end of Paul's life.
और शायद पौलुस के जीवन के अंत के समय में ये लिखा गया था.
AD 63, 64, 65.
और शायद 64, 65 या 66 के साल में.
And Paul would have been possibly in Rome at that time between imprisonments. We don't really know.
और पौलुस शायद रोम में रह रहे होंगे जिनके जब उनको बंदी बनाया गया शायद.
And one of the reasons we do not know about this letter.
एक बात जो हमको इस चिट्ठी के बारे में नहीं पता.
Is because any ministry work on the island of Crete is not recorded in Acts.
क्योंकि प्रेरितों की किताब में क्रेते के द्वीप पर कोई भी कार्य के बारे में नहीं वर्णन नहीं है वहाँ पे.
It's not in the book of Acts, so we can't see the timing or where it fitted in. We don't know when Titus was sent there.
क्योंकि प्रेरितों की किताब में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं कि तीतुस को कब भेजा गया.
We don't even know when Paul went and planted churches there. It's not mentioned.
और हमें यह भी नहीं पता अगर पौलुस वहां कब गए थे.
But you know the exciting thing about that.
लेकिन इसके बारे में एक उत्तेजित बात ये है.
Is that it does mean that a lot was happening that's not recorded by Luke.
और उसका मतलब ये है कि बहुत भी बहुत सारे काम हो रहे थे परमेश्वर के जो लूका इसमें नहीं लिख सका.
Even as we write the regions beyond story, which is not the story of a person, it's a story of a people group.
और जब भी हम regions beyond की कहानियों को लिखेंगे जो किसी एक की नहीं सब लोगों की है.
You will always know there will be things happening behind that's not recorded.
और आप जानेंगे कि बहुत सारे काम हो रहे होंगे जिनका जिक्र नहीं होगा.
And you feel how many other stories out there, how many other letters to dear people are out there.
और कितने सारे और चिट्ठियां हैं जो लोगों को लिखी जानी थी.
But God in His wisdom,
लेकिन परमेश्वर ने अपने ज्ञान में
kept this letter for us.
हमारे लिए इस चिट्ठी को रखा है बचा के.
And I do love that type of biblical history. I enjoy it. I don't know a lot about it.
और इस तरह के बाइबल के इतिहास मुझे बहुत अच्छा लगता है.
But I enjoy the people stories.
लेकिन मैं लोगों की कहानियों को पसंद करता हूँ.
Because then it tells me being a people.
क्योंकि ये मुझे बताता है कि हम जो लोग
हैं, I can also be part of the story.
तो मैं लोगों का भाग हूँ, तो मैं कहानी का भी भाग हूँ.
Amen. So it's really wonderful. So that's what we know. Titus is on this island of Crete, just south of Italy.
और इटली के दक्षिण में ये क्रेते का टापू था और वहां पर तीतुस था.
Roman Empire.
और रोमी साम्राज्य का भाग था वो.
And you know from the Roman Empire it was a strong culture.
और रोमी साम्राज्य की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, बहुत मजबूत थी.
Totally lived out in depravity.
लेकिन वो बिल्कुल ही बहुत ही बुरे तरीके से जीते थे.
I mean, lifestyles were terrible.
और उनका जो जीने की शैली थी वो बहुत बुरी थी.
There was no commitment. It was just really everybody did what they wanted to. Every sensual thing they could do.
कोई वचनबद्धता नहीं थी किसी के लिए. जो जो चाहता था, जो दिल करता था, वही लोग करते थे.
Corruption was a way of life.
और भ्रष्टाचार जो था वो उनके जीवन का एक भाग था.
And as we'll read a little bit later, even living out a lie, a life of lying.
और बाद में हम देखेंगे कि एक झूठ बोलना भी जो था
was an accepted norm.
और वो आमतौर पे अपनाया जाता था. उसको
it wasn't something that was seen as wrong.
और उसको गलत भी नहीं माना जाता था.
You didn't expect people to tell you the truth.
आप नहीं अपेक्षा करते कि जो बोलो सब सही हो.
In the culture.
और उनकी संस्कृति में झूठ बोलने को बहुत अच्छा माना जाता.
The wonderful thing that it tells us.
और हमें ये बताता है
is that the gospel is able to break into any culture.
समाचार किसी भी संस्कृति में आकर काम कर सकता है.
एनी कल्चर,
किसी भी संस्कृति में.
So when God calls you to a village or into a situation where you know you're going to face really established strongholds of wrong thinking and beliefs.
तो परमेश्वर अगर किसी गांव में आपको ले जाए जहां पर एक गलत विश्वास का गढ़ भी है.
The gospel is powerful.
तो सुसमाचार उसमें भी सामर्थ्य है. उसको
महा The gospel is able to bring down everything that sets itself up against God, every pretense, every thought, it will bring it down.
सुसमाचार हर उस बात को गिराने की सामर्थ्य रखता है जो अपने आप को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करता है.
So that's just a little bit of insight, and then we're going to go through this book. I hope that I'll get through all of it.
और आशा करता हूं कि इस पूरे में से हम को कर पाएंगे.
But when Franco and I think Edgar, I also believe, wrote to me and said, when you come, could you think of just tackling some of the key on the ground pastoral and eldership responsibilities, leadership life responsibilities.
और फ्रैंको और शायद एडगर ने भी मुझसे कहा था कि जब मैं आऊं तो मैं पासबानी और अगुवाई प्राचीनों को लेकर उनकी जिम्मेदारी पे कुछ बताऊं.
I asked God, I got before God, I said, what do I do?
और मैंने परमेश्वर से पूछा कि मैं करूं?
And I felt God very clearly speak to me about Titus, not a book I know very well.
और परमेश्वर ने मुझे तितुस के ओर ले गया.
Bits here and bits there and that.
और बहुत अच्छी तरह पहले नहीं जानता था मैं इसको.
And if you know me well, which most of you do,
और अगर आप मुझे अच्छी तरह से जानते
हैं, you also know that some form of expository preaching is not my style.
तो ये जो expository जो प्रचार है, ये मेरा नहीं है.
And I wouldn't even call this expository preaching.
मैं ये जो कर रहा हूँ, इसको भी ये नहीं मानूंगा.
Because I'm even going to take thoughts out of here that will trigger understanding, not what Paul was trying to say.
और कई जो विचार होंगे वो इस तरीके से मैं आपको नए तरीके से बताऊंगा.
But what I do want us to be very aware of,
और मैं चाहता हूं कि एक बात को आप समझ ले,
is that I believe there is a prophetic thrust in doing this scripture, in this book, this letter.
इस चिट्ठी को जो मैं इस पत्र को कर रहा हूं, इसमें एक भविष्यवाणी की भी बात आ रही
है. God wants to equip us for what he is going to call you and I to do.
परमेश्वर आपको और मुझे जो करने के लिए बुलाया है, उसके लिए वो तैयार करेगा.
If you would like to ask any questions, indicate to me and I'm happy as we go along, we'll do that.
अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो संकेत दे देना और हम कोशिश करेंगे.
But otherwise, I'm going to press ahead.
नहीं तो हम आगे बढ़ते
रहेंगे. Father, would you give me strength and clarity of mind?
और प्रभु हमें स्पष्टता दे और हमारे मन को में परमेश्वर.
Give me the right words not only for my dear friends but for Gurmeet as well.
और हमें परमेश्वर सही शब्द दे हम सब के लिए.
And Father, would you please speak deep into our spirits?
और पिता हमारे मनों में गहराई में हमसे बात कर.
And allow us to be equipped and empowered for all you got for us in the future.
जो भी तू भविष्य में हमसे कराना चाहता है, उसके लिए हमें तैयार कर परमेश्वर.
Amen.
Amen.
Amen. Okay, so let's just turn to the book of Titus. It follows two letters that Paul wrote to Timothy.
और तिमोथियस को दो जो चिट्ठियां लिखी थी, उसके बाद में तितुस आता है, उसकी ओर
मुड़ेगा. And I'm going to read to you from the ESV.
और English में ESV से पढ़ेंगे.
Standard version. How do we want to read it in both or how? What's best? Guide me, somebody. I don't know what's best. Okay. So what we're going to do is we're going to read verses 1-4, and then we'll read 5 to the end of the chapter, 5-16, in two bits. I really want to ask you to give yourselves to this and to really concentrate as best as you can. Trust that God is going to put things in your heart over these few hours that we look at the book of Titus.
और अगले कुछ घंटे में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे दिलों में कुछ डालेगा, कुछ करेगा जैसे हम इसको देखेंगे.
Okay, so remember on a specific day on this beautiful island in the middle of the Mediterranean.
और देखो कि इस सुंदर टापू पे एक सुंदर दिन में.
One of the company of believers who worked with Paul and the apostles.
और पौलुस के साथ में कुछ विश्वासी जिन्होंने काम किया था.
Maybe Tychicus.
शायद Tychicus था.
Or even Zenas.
या जेनस था.
Or Apollos.
यार अपोलोस था.
Arrives on the island. This little boat crosses the Mediterranean.
और नाव से शायद इस टापू पे पहुंचे होंगे.
There's lots of hugging and being together again on the beach.
और बहुत सारा उस बीच पर एक दूसरे के गले मिले होंगे और इकट्ठा खुश हुए होंगे.
And then this letter is handed over to this young man from Greek origin.
और फिर उन्होंने इस चिट्ठी को सौंपा इस नौजवान को जो यूनानी था.
And it's a letter written by Paul.
और ये जो चिट्ठी थी, ये पौलुस द्वारा लिखी गई थी.
And it goes something, or it goes not something like this, it goes like this.
और ये इस तरीके से कहता है.
Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect, and their knowledge of the truth, which accords with godliness, in hope of eternal life, which God, who never lies, okay, there's a hint, Paul's already starting to tackle the wrong thinking on Crete. A God who never lies promised before the ages began, and at the proper time manifested in his word through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior. what a little opening to the letter. And then he thinks, okay, let me get back to Titus.
Shall I read?
No, just one. My true child in a common faith, grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Thank you. Hindi, verse 1. Thanks. As Gurmit reads, those of you in English, just read it again. Get it. Allow the word to become life to you, just as you read it.
पॉलस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। यहाँ पे एक संकेत दिया गया है कि क्रेते में जो लोग झूठ बोलते थे उसको लेके, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। Until what verse?
Just to the end of 4.
तितुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
Amen. Just quickly before I read on. One thing you're going to find about this letter is that there is a lot more instruction. In other words, Titus, do this, okay? Very almost authoritarian, just like Paul saying this needs to happen.
और एक चीज इस चिट्ठी में हम पाएंगे वो है कि पौलुस काफी निर्देश देते हैं तिमुथियुस को एक अधिकार के साथ कि उसे क्या करना
चाहिए। And there's also a real sense of urgency.
और ऐसा भी है कि जो वो करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि तुरंत तुझे करना होगा।
And I hope as I chatted to you in the first session, as I spoke to you in the first session today.
और जैसे मैंने पहले सेशन में आपको बताया,
you picked up some of the urgency of God.
और आपने परमेश्वर की ओर से जो तुरंत करना है उसको ले पा लिया होगा।
So this letter doesn't have the warmth that say 1 Timothy has.
और शायद जो पहले तिमुथियुस में जो बड़े मिलनसार तरीके से लिखता है वैसा नहीं है।
It doesn't have the same care. How are you doing? You know, how's your health? Are you doing all right? You know, that sort of encouragement that Timothy gets.
जैसे तिमुथियुस को पौलुस लिखता है, तू कैसा है, तेरी सेहत कैसी है, वे उस तरीके से तितुस नहीं लिख रहा पौलुस।
And maybe part of the reason for that, there could be a few reasons, and I'm just surmising.
और इसके कुछ कारण हो सकते हैं, मैं सिर्फ आगे सोच रहा हूँ।
But I wonder if Paul wasn't in a place of understanding that his time had come very close to the end.
Shayad,
I think 2 Timothy.
Shayad Paul abhi us jagah pe pahuncha nahi tha ki uska samay bahut kareeb aa gaya tha.
I think it's in 2 Timothy, sorry, I won't have time there now. But where you can sense in Paul that he's saying, my time is near. It's coming to a close.
और दूसरे तिमुथियुस में हम देखते हैं कि लगता है कि पौलुस को एहसास हो गया है कि अब उसका समय करीब आ गया है।
So for Timothy, he's getting this instruction quickly. Come on now, you got to just do these things right.
और इसीलिए वो कह रहा है कि वो निर्देश दे रहा है कि तुझे जल्दी ये करना है।
So now he tells us why he wrote this letter.
तो फिर वो हमें बताता है कि उसने ये चिट्ठी लिखी क्यों?
Verse 5.
और पांचवा वचन,
this is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order. One of the other versions says finish, complete, bring to a close, finish what is left unfinished. And appoint elders, leaders, in every town as I directed you. So straight away we see that Titus had been given a very definite task. Okay, so before we go tomorrow, I'm going to give you a definite task. I've got a big one for you. It goes something like this. Please see that the whole of India is saved. Okay?
पांचवा वचन, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तो हम देखते हैं कि तितुस को एक निश्चित जो काम है वो दिया गया था करने के लिए।
Okay, verse 6. If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers, and not open to the charge of debauchery or insubordination. For an overseer, as God's steward, must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered, or a drunkard, or violent, or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it.
जो निर्दोष और मैं इसलिए तुझे छोड़ कर आया हूं कि तू प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए न हठी न क्रोधी न पियक्कड़ न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो पर अतिथि सत्कार करने वाला भलाई का चाहने वाला संयमी न्यायी पवित्र और जितेंद्रिय हो और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके
आमेन Okay, so straight away we know why he's there, and now he gives this very clear instruction of what leaders should look like. Why? Well, we'll read in the next section.
और हाँ वो स्पष्ट रूप से बताता है कि एक अगुआ होने का मतलब क्या है वो निर्देश दे रहा है क्यों वो लिख रहा है
For there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. One of the Cretans, a prophet of the own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Therefore rebuke them sharply that they may be sound in the faith, not devoting themselves to Jewish myths and the commands of people who turn away from the truth. To the pure all things are pure, but to the defiled and the unbelieving nothing is pure, but both their minds and their consciences are defiled. They profess to know God, but they deny Him by their words. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. Pretty strong words, eh?
क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है कहा है क्रेती लोग सदा झूठे दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं ये गवाही सच है इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं
Amen. Right, let's get into scripture. Everybody okay? If you feel a little bit tired, you just lift your right hand and you smack yourself on the cheek and you'll find you'll be fine after that.
Okay. So
stay with me. This is really important stuff. I know it's hot and tiring. Okay, let's get going. Verse 1 of chapter 1. It's interesting, if you read Paul's letters, you will know how amazingly relational this man was.
और जब आप पौलुस की चिट्ठियों को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि वो कितना करीबी से रिश्ता रखने वाला इंसान था।
How he knew everybody's names from what you can see.
और आप देख सकते हैं कि वो सभी का नाम कैसे याद रखता
था। He knew what people did,
और वो जानता था लोग करते क्या हैं।
But it's whenever he introduces himself in the letter,
और जब वो अपने आप का परिचय देता है,
it seems that he lays a very clear foundation of who he is that gives him a right to put this letter forward.
तो फिर वो अपना परिचय देने में ही बहुत स्पष्टता से अपने अधिकार को दिखाता है, जिसके वजह से वो इस चिट्ठी को लिख सकता है।
First verse we see Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ.
तो पहले वचन में ही हम देखते हैं पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है।
Now we are an apostolic movement, and so we use this word apostle very often.
तो हम जो प्रेरित रूपी लोग हैं, तो इसलिए हम जो प्रेरित शब्द है इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं।
But I want you to understand again that an apostle is a gift.
मैं चाहता हूं कि हम जाने कि जो एक प्रेरित होता है वो एक वरदान होता
है। Not a title.
और ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है।
Okay, so when God calls you into apostolic ministry or prophetic or pastoral or teaching,
परमेश्वर अगर बुलाता है आपको सेवकाई में, हो सकता है प्रेरित की, हो सकता है नबुवत की या पासबानी की या शिक्षा की,
you don't suddenly get a shining light appear above your head.
तो अचानक से आपके माथे के ऊपर एक चमकदार रेखा नहीं आ जाती।
You still have to use your feet. You don't just float around.
और अभी भी आपको पैरों पर चलना होता है, आप हवा में उड़ने नहीं लग जाते।
And Paul is making it quite clear here.
और पौलुस बहुत स्पष्ट से बता रहा है यहाँ पे।
Firstly, I am a servant.
सबसे पहला चीज, मैं दास हूँ।
The Hebrews tells us that Jesus was the first apostle, the first sent one.
और हमें बताया गया है कि यीशु जो था वो सबसे पहला प्रेरित था, भेजा हुआ था।
I'm not sure if these words work in Hindi, but he was the first envoy.
और वो जो
ambassador,
वो जो what is it, राजदूत, वो पहला राजदूत था।
So Jesus Christ says, Gurmeet, I'm calling you to an apostolic work.
तो यीशु मसीह ने कहा कि गुरमीत, मैं तुझे एक प्रेरित की सेवा के लिए बुलाता हूं।
Sending you to the north of India.
तो इसीलिए मैं तुझे उत्तर भारत को भेज रहा हूं।
You will be my ambassador.
तो तू मेरा राजदूत होगा।
To those communities.
उन समाजों के लिए।
As I came to earth as an ambassador bringing the good news and restoration to God himself.
और जिस तरीके से मैं स्वर्ग को छोड़ के धरती पे आया और परमेश्वर के लिए लोगों को उसके पास लाने
so
के लिए,
I am sending you.
वैसे ही मैं तुझे भेज रहा हूँ।
As I served,
और जैसे मैंने सेवा की,
washing feet,
और पैर धोए,
okay, very nice feet. Can you lift it up any higher or not? Not okay.
Hold this.
Don't sit in the front row next time. But as Jesus washed the feet,
और जैसे यीशु ने पैर को धोया,
the work of the lowest servant of the time,
और उस समय में सबसे नीचा जो नौकर होता था उसका काम था,
couldn't get any lower,
उससे नीचे नहीं जा सकता था,
so go and serve the people.
तो तुझे भी जाकर वैसे ही सेवा कर।
So Paul says, I'm coming among you.
और पौलुस कहता है कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ।
I'm coming to serve you.
और मैं तेरी सेवा करने आ रहा हूँ।
And brothers and sisters, it doesn't matter what we do.
और भाइयों बहनों, चाहे जो भी हम करें,
please guard your hearts.
अपने दिलों को संभाल के रखो।
That whatever role you play,
कि जो भी आपकी भूमिका है,
doesn't puff you up in any way.
किसी तरीके से आप फूल ना जाओ।
To think, oh, I'm now somebody.
कि मैं अब कुछ बन गया हूँ।
Always, as Paul reminds himself more than he maybe is Titus.
और पौलुस शायद तीतुस से ज़्यादा अपने आप को याद दिला रहा है।
As I write to you now, I want to serve you.
और मैं तुझे लिख रहा हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ।
And it's a very, very fine line.
और ये बहुत ही बारीक रेखा है।
So even while I'm here,
और अब मैं यहाँ पर हूँ,
and we finish our meal downstairs,
और नीचे मैं अपना खाना जब हम खा लेते
हैं, so nice when somebody takes my plate and says, no, we'll wash it for you.
और कोई आकर कहता है मेरी प्लेट लेकर के, मैं धो लूँगा तुम्हारी प्लेट.
Hey, this is me. Watch yourself.
तो वहाँ पे सावधान रहना है.
A good reminder.
बहुत अच्छा.
Because you want to be served, you want to be recognized.
क्योंकि आप चाहते कि मुझे पहचाना जाए, मेरी सेवा की जाए.
But we are called to serve.
लेकिन हमें सेवा करने के लिए बुलाया गया.
Which will include washing people's feet.
एक दूसरे के
washing their plates.
उनकी
I can see what you all think. You're going to hold me to it now, aren't you? Lunchtime, okay. I'm in the kitchen at lunchtime.
तो lunch time में kitchen में होंगे सबकी plate धोने के लिए.
Bring it on. But Paul here, it's funny that he says servant of God and apostle of Jesus Christ.
और यहाँ पे पॉलस कह रहा है कि दास भी कह रहा है और प्रेरित भी हूँ ये कह रहा है.
Because it's repetition.
क्योंकि ये दोहराना है.
Servant, servant.
और दास बोलेगा तो दोहराना हो जाएगा.
Apostle,
प्रेरित और प्रेरित.
You cannot separate them.
आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते.
So please, whatever you do.
तो आप जो भी करते हैं.
If we call you, your church leaders call you, we feel we want to set you apart as an elder.
अगर कलीसिया के लोग आपको बुलाते हैं, अगुए कहते हैं कि हमें लग रहा है कि आपको प्राचीन बनाने के लिए बात करनी है, तो घर जाइए.
Write on your bedroom wall.
आपकी दीवार पर लिख दीजिए.
I've been called to wash feet.
मुझे पैरों को धोने के लिए बुलाया गया है.
Amen. And that's what Paul's saying here.
और यही पौलुस यहाँ पर कह रहा है.
The actual meaning of the word,
और उस शब्द का जो सही मतलब है,
of his words here is a slave of Jesus.
और वो है यीशु मसीह का गुलाम.
In other words,
दूसरे शब्दों में,
Pankaj, oh you come here now. Okay, yes, Paul. Beforehand, he's dressed in all his rabbinical robes, and he's been learning, and his head is all puffed up, and his cheeks. He thinks he's really someone important.
और पौलुस पहले बहुत चोगा पहनता था और बहुत अलग तरीके से तैयार होता था.
But he doesn't know.
और जब वो यीशु को नहीं जानता था,
that he is a slave to sin.
लेकिन वो नहीं जानता था कि वो पाप का गुलाम था.
Wherever that sin wants him to go.
पाप जहाँ चाहता था.
This is why I chose a young man. You see. Wherever sin wants him to go,
जहाँ भी पाप चाहता था,
he's a total slave.
और वो पाप का गुलाम था.
Down, down, yeah, up, 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 quickly. All right, and then Jesus comes.
और फिर यीशु आता है.
Breaks this chain.
और इस जंजीरों को तोड़ता है.
And then he becomes a slave to Christ.
और अब ये मसीह का गुलाम बन जाता है.
Now he's been blood bought. He's become a slave.
अब लहू से खरीदा गया है.
Whatever Jesus wants.
अब जो भी यीशु चाहता है.
Now it's not for his destruction. It's for life.
और अब इसके नाश के लिए नहीं, इसके जीवन के लिए ये है.
Okay, you become a slave of Christ, and Paul saying.
आप मसीह का दास बनते हो.
A slave of Christ.
और पौलुस जो मसीह का दास है.
Just out of interest sake. A man by the name of N.T. Wright, Tom Wright.
एक टॉम राइट नाम का व्यक्ति था.
Has just released his translation of the Bible.
और उसने बाइबल का अपना अनुवाद किया है अभी.
After years of study, there's some very interesting insights in it.
और उसमें बहुत ही दिलचस्प बातें हैं.
Very highly respected man.
और बहुत ही आदरणीय इंसान है वो.
Could I have Ephesians 4:11 up on the screen, if you don't mind. Ephesians chapter 4. So Paul is speaking there. I'm an apostle. Note, it's not an apostle with a big A. It's got a little lower thing, so it's not a title.
तो अपोस्टल जब वो प्रेरित लिखता है,
he knows that Christ called him out. So
तो इस तरीके से लिखता है कि वो ऐसे नहीं लिख रहा है कि उसका बड़ा लेबल है और शीर्षक है.
Could I have the next verse or next part of it? Okay, so sorry, go back again. So here's the scripture. Okay, Ephesians 4. If you just go to the top. Okay, so Christ ascended.
तो मसीह ऊपर चढ़ा लिया गया.
He went through the heavens. He opened up the heavens for us.
वो हमारे लिए स्वर्ग को खोला.
To the right hand of the Father.
पिता की दाहिनी ओर बैठा है.
He intercedes. He's standing there fighting our cause for us.
और हमारे लिए निवेदन कर रहा है वो.
And in order for the church to flourish.
और कलीसिया को बढ़ने के लिए.
Okay. He gave apostles.
उसने कितनों को प्रेरित होने के लिए.
Sent ones.
और भेजे हुए प्रेरित.
Sent servants.
भेजे हुए दास.
He gave prophets.
उसने भविष्यद्वक्ता.
Old Testament prophets.
पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता,
New Testament prophets.
नए नियम के भविष्यद्वक्ता.
These are people in our midst who bring the word of God, who are able to show us God what God's saying, lead us.
और ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन लेकर हमें बताते हैं कि क्या करना है, आगे बढ़ना है.
He gave evangelists.
और उसने सुसमाचार सुनाने वालों,
those who are able to very easily share the beautiful gospel.
और जो परमेश्वर के सुसमाचार को बता सकते हैं आसानी से.
And he gave us shepherds and teachers.
और फिर उसने रखवाले और उपदेशक दिए.
Pastors, those who are able to care and disciple.
और जो लोगों की को संभालते हैं और उनको शिष्य बनाते हैं.
So Christ gave those so that the church can. Let's have a look.
और मसीह ने इनको दिया है
टू इक्विप द सेंट्स. ओके,
यू रीड द होल.
सो ही गेव, या सो ही गेव दोस गिफ्ट्स टू इक्विप द सेंट्स फॉर वर्क्स ऑफ मिनिस्ट्री.
तो उसने इन सब को दिया जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा के लिए,
बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट,
सेवा के काम के वो कर सके और मसीह की देह
उन्नति पाए. दिस इज गिफ्ट्स टू इंश्योर दैट व्हाट यू डू एंड व्हाट आई डू सक्सीड्स.
तो ये वरदान इसलिए दिए ताकि आप और मैं जो करते हैं वो सफल हों.
Tom Wright does something interesting.
Tom Wright कुछ दिलचस्प करते हैं.
He says he wonders it's possible.
और वो सोचते हैं कि अगर हो सका तो.
That this scripture could read to equip the saints.
और ये जो लोगों को सिद्ध होने के लिए.
Comma.
और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं.
Okay. So. At the moment it says to equip the saints for works of ministry. Okay. So in other words the gifts are given to help the saints to equip them for ministry.
तो इसका मतलब ये है कि जो वरदान है वो जो लोग हैं उनको तैयार करने के लिए सेवकाई के लिए.
But if you put a comma there, which is possible, he says in the language.
लेकिन अगर वहाँ पे comma लगा दिया जाए.
It means that those gifts are given to equip the saints.
इसका मतलब है कि वो जो वरदान है वो लोगों के लिए दिए गए हैं.
And for continuing the work of ministry.
ताकि सेवकाई को जारी रख सकें.
Okay, so that these gifts are given to equip the saints and to continue to serve and to serve and to serve the body.
और ये वरदान इसलिए गए थे ताकि लोगों को तैयार कर सकें और सेवकाई के काम को लगातार जारी रख सकें.
Very interesting little thing that. So the main thing about these Ephesians 4 gifts is that they're not just there to equip the saints.
तो एफिसियो 4 की जो सेवकाई है वो सिर्फ लोगों को तैयार करने के लिए नहीं,
but they themselves,
लेकिन अब खुद भी
must continue in the work of ministry,
लगातार सेवकाई को आगे जारी रखने के लिए भी है.
John Wesley says that he feels that what Paul was saying, this is my office.
और उनको लगता है कि पॉलस कह रहा था कि
Christ is saying to Paul, this is my office, the one I'm entrusting to you.
और यीशु मसीह पॉलस को कह रहे थे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है जो मैं तुझे सौंप रहा हूं.
In other words,
दूसरे शब्दों में
Christ comes as the first apostle, he sent from the Father.
मसीह है जो पहला प्रेरित है, पिता की ओर से भेजा गया है.
He fulfills his mission,
और वो अपने मिशन को पूरा
करने क्रूस
पर मरता है.
Resurrected after 3 days,
3 दिन के बाद जिलाया गया है.
Shows himself to some 500 people who become his witnesses,
500 लोगों को फिर दिखाई देता है जो उसको उसके गवाह हैं. और फिर ऊपर चढ़ाया गया,
gifts,
उसकी सारी वरदान है.
Out. So in other words, he's taking what he did and he's entrusting it to individuals to continue the work.
और जो भी किया था, अब वो लोगों को सौंप रहा है अपने वरदानों को.
At Fusion this year, I preached a word from the parable of the talents.
और Fusion में मैंने इस साल जो what is talent in Hindi? तोड़े, जो तोड़ों का दृष्टांत है उसके ऊपर प्रचार किया था.
That when the master goes away, he takes what's his.
जो स्वामी जब चला जाता है, जो उसका है वो लेता है.
He says, my servant Gurmeet.
और फिर वो बुलाता है मेरे सेवक गुरमीत.
I'm going away.
मैं जा रहा हूँ.
I'm giving you what's the equivalent of, I think it was 20 years salary.
और वो कहता है कि मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो 20 साल की तनख्वाह के बराबर है.
20 years salary.
20 साल की तनख्वाह के बराबर दे रहा हूँ.
And I'm entrusting this to you.
और मैं ये तुझे सौंप रहा हूँ.
Don't hold it like that. You're going to drop it.
और ऐसे मत पकड़ो, गिर जाएगा.
It's a big box.
और बहुत बड़ा है.
Okay.
ठीक है.
I'm entrusting that to you now.
और मैं ये तुझे सौंप रहा हूँ.
It's now over to you.
अब ये तेरे पास है.
And that's what he is saying here.
और वही यहाँ पर वो कह रहा है.
So Paul writes to them as one who's been given a very, very important task.
तो पौलुस उनको लिख रहा है, एक वो है जिसको बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
Where he's got this message and the knowledge of truth.
और उसको ये जो संदेश मिला है और सत्य के बारे में पता चला है उसको.
That he's been entrusted, that he's now got to carry over.
और वो जो उसको सौंपा गया है और उसको आगे बढ़ाना है.
When you go back to your church and your various ministries, if I may call them that,
अगर आप अपनी कलीसियाओं में और अपनी सेवकाइयों में वापस जब जाओगे,
you've been entrusted,
तो आपको जो सौंपा गया है,
with truth,
सत्य के साथ,
to go and bring truth,
ताकि आप फल ला सको.
When truth gets into our minds,
जब सत्य हमारे दिमागों में बसता
है, it changes our hearts,
हमारे दिलों को बदलता है,
it changes the way we live our lives.
जैसे हम जीते हैं उसको बदलता है.
We are ambassadors of truth.
हम सत्य के राजदूत हैं.
And that's part of our calling.
और ये हमारी बुलाहट का भाग है.
And that's what Paul says.
और यही पौलुस कहता है.
He carries on.
और फिर वो आगे कहता है,
in verse 1,
और पहले वचन में,
I want you just to see that second line there,
और दूसरी वाक्य को हम देखेंगे,
for the sake of truth, sorry, of the faith, for the sake of the faith. What he is saying there is he's establishing the right motivation for what we do or what he does.
Sorry, can you repeat that?
Okay, so here where it says, Paul, a servant of God, an apostle of Christ, for the sake of the faith of God's elect.
चुने हुए लोगों के.
Okay, you got it.
परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और भक्ति के अनुसार.
And the point I want to make there is that he has the right motivation for doing what he's doing.
वो जो कर रहा है उसके लिए उसका उसके पास एक सही उद्देश्य है.
And the question I want to ask you,
और आपको मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ,
is what is the motivation for you doing what you do?
आप जो कर रहे हैं उसको करने के पीछे आपका मकसद क्या है?
Why do you do what you do?
आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं?
We got a terrible problem in Africa.
अफ्रीका में बहुत ही बुरी समस्या है ये.
Most, I would say, most church leaders.
ज्यादातर जो अगुए हैं कलीसिया के.
Lead a church.
कलीसिया की अगुवाई करते हैं.
Because it's a way of getting an income.
क्योंकि इसलिए करते हैं क्या, ताकि उससे उनको आमदनी मिले.
Okay. Most of them.
ज्यादातर इसीलिए करते हैं.
In nations right across Africa, even our own nation of South Africa.
हमारे दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा ही है.
They dress up, they put on a nice suit.
और बहुत अच्छा सूट पहनते हैं.
They come up with a name that is beyond words.
और ऐसा नाम बड़ा सा बनाते हैं.
The holy tabernacle of divine inspiration of miracle healing international.
ठीक है, इतना बड़ा नाम वो अपना रख लेते हैं.
And then they preach, they watch T.G. Jakes or whatever his name is on TV. They see his style and they preach.
और वो टीवी पर उस प्रचारक का स्टाइल देखते हैं और उस तरीके से फिर वो प्रचार करते हैं.
Because they know if they can gather a crowd.
क्योंकि उनको पता है अगर वो भीड़ को इकट्ठा कर लें.
Because much of Africa is a fear-based culture.
और ज्यादातर जो अफ्रीकी लोग हैं वो डर में जीते हैं.
And if they can put enough fear on the people,
अगर लोगों पे वो डर डाल सके और ज्यादा,
the people will give their hard-earned wealth,
तो लोग मेहनत से कमाया हुआ पैसा देंगे,
which is an income.
तो फिर उनके लिए आमदनी का साधन होगा.
And Paul here is saying, why am I doing this? I'm doing it for the sake of the faith of God's elect.
और परमेश्वर कह रहा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरा मकसद ये है कि परमेश्वर के चुने हुओं के विश्वास के लिए मैं ये कर रहा हूँ.
And he straight away he's undermining something that was happening in Crete where the Jewish leaders were doing it for gain.
और फिर जो क्रेते में जो यहूदी लोग कर रहे थे वो गलत कर रहे थे और उसको गलत साबित करने के लिए पौलुस कह रहा है.
Please make sure you know why you do what you do.
और आपको पता होना चाहिए आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं आप.
It cannot be for reward.
ये सिर्फ नाम के लिए नहीं हो सकता, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं हो सकता, और ये सिर्फ स्टेटस के लिए नहीं होता, और नियंत्रण डालने के लिए नहीं।
We do it because of the glory of the gospel, the beauty of the message.
समाचार के संदेश की महिमा के लिए करते हैं।
To see that those that Jesus has elected, those He's chosen,
जिनको यीशु ने चुना है, जिनको उसने चुन लिया है,
strengthened in faith,
उनको विश्वास में हम मजबूत कर सकें।
Amen. And he carries on. He says in verse 2, in hope of eternal life, which God, who never lies, unlike the gods in Crete.
और फिर वो कहता है कि उन चुने हुओं के लिए,
the one God they worship was the God of lies.
और जिस परमेश्वर को वो आराधना करते थे वो तो झूठ का परमेश्वर था उनका।
When you worship a God of lies,
और जब आप झूठ के देवताओं की आराधना करते हैं,
it means you can lie.
तो इसका मतलब आप भी झूठ बोलते
हैं। I want to be like my God.
और फिर हाँ, मेरा देवता वैसा ही है।
But when we worship a righteous Savior,
और जब हम एक सच्चे उद्धारकर्ता की आराधना करते हैं,
it makes you want to deal with a sin in your life.
और वो आपके पाप से निपटारा करता है।
So the hope of eternal life. This is a life and death message. He goes on there to say.
तो फिर ये मौत और जीवन का संदेश है।
In the hope of eternal life.
और वो है कि जो अनंत काल की जो आशा है।
Which God promised before the ages.
और जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा समय से पहले की थी।
Verse 1, verse 3.
और एक वचन तीन।
And at the proper time manifested in his word through the preaching with which I have been entrusted. We touched on that earlier.
पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया।
Jesus has taken what is his, he has taken what he died for, and he's come and he's put it in your hand.
और परमेश्वर ने लिया जो उसका अपना था, जिसके लिए उसने अपनी जान दी, और लेकर तुम्हें सौंपा है।
His love for children,
और उसका जो प्यार है बच्चों के लिए,
and to see children prosper,
और बच्चे जो हैं वो सफल हों,
taken a portion of that,
उसमें से उसने थोड़ा सा लिया,
and he's given it to you,
और वो लेकर मेलेनी वो आपको दिया,
and it's a joy to see what you're doing,
और जो आप कर रहे हो बहुत right? खुशी की बात है।
And every time I think you ride a motorbike, I heard, is that right?
और
every time you head off,
और जब भी आप बाइक चला के जाते हैं,
you've got your bag, I'm sure, most probably on your bike. Okay, on your bike. Just think, you're also carrying a bit of Christ's love and His heart for children.
तो जब आप जाते हैं, तो जानो कि आप यीशु के प्रेम और उसके दिल को उठाके जा रहे हैं बच्चों के लिए। और उसने वो लेकर आपको दिया है।
Amen. Those of you who've come from Punjab,
आप लोग जो पंजाब से आए हैं,
when you get back on the train,
जब आप ट्रेन पर जाओगे वापस,
20, how many? 30 hours maybe, I don't know.
30 hours.
Eh?
It's more. कितने घंटे लगेंगे बोलो यार?
I was watching a train driving up here.
30 hours, yeah.
Yeah. I was watching a train as we were coming.
जब मैं आया तो मैं देख रहा था एक ट्रेन आ रही थी।
Franco was driving.
और फ्रैंक को चला रहा था
This new beard.
और अपनी दाढ़ी के साथ इस तरीके से चला रहा था
And there is the train.
और वहां से ट्रेन आ रही थी
But as you go,
और जैसे आप जाते
just
हैं
realize,
आप जानते हैं
that Jesus bags packed.
Sorry?
They are Jesus bags with you.
और यीशु के जो थैले हैं जिस वो भरा हुआ है वो आपके पास हैं।
Things that he's entrusted for you to do.
वो चीजें जो आपने उसने आपको सौंपी हैं करने के लिए।
And that's what Paul's saying. I've been given this to now pass on.
और वही पॉलस कहता है कि मुझे ये मिला है आपको देने के लिए।
All right, so far.
ठीक
है। Let's do one more.
एक और करें।
By the command of God the Savior. At the end of verse 3, by command of God the Savior.
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार।
It's like, sorry, here they pass my notes there. Okay, it's like when you open the mail.
जब आप किसी चिट्ठी को खोलते हैं।
And a letter comes, a command. If you're in the army, you get your commands from the generals.
अगर आप सेना में हैं, तो आपको आपके जनरल से कमांड मिलता है, आदेश मिलता है.
And at the top it says, General so and so on behalf of the Prime Minister and Cabinet of the Republic of India.
और फिर वो ऊपर लिखा होता है कि जनरल इसने भेजा है भारत सरकार की ओर से.
यू गुरमीत दुनोवा.
आप गुरमीत
दुनोवा. राइट. Okay, and your lovely wife,
और तुम्हारी पत्नी सुषमा,
and your children,
और तुम्हारे बच्चे,
and all of those who will follow you,
और आपके साथ जो भी हैं,
you are being sent to,
आपको भेजा जा रहा है,
this city, that city, next city,
और इस शहर पे, इस शहर पे और इस शहर के लिए,
and you read it and you think, whoa, this is God's authority,
और आप देखते हैं, अरे इसमें तो अधिकार है.
And may I remind you, it says at the back.
और पीछे लिखता है, मैं आपको याद दिलाऊं.
If you disobey these orders,
अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करते हैं,
you will be court-martialed.
तो फिर आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा.
We will take your wife away from you. You will have to cook your own food.
आपकी पत्नी को आपसे ले लिया जाएगा, आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा.
But that's what Paul's saying.
और यही पौलुस कहता
है, I received this command from Jesus.
यीशु से ये आदेश मुझे मिला है.
And if we take seriously enough what God's called us to do,
परमेश्वर ने जो हमें करने के लिए बुलाया, अगर हम गंभीरता से ले,
then the focus goes away from where we being sent,
तो फिर जहां हमको भेजा गया है,
to whom we being sent,
जिसके लिए हमको भेजा गया है,
and it puts the focus on who has sent.
लेकिन उससे हट के जिसने मुझे भेजा है उस पर हम केंद्रित हो जाते हैं.
आमेन. फ्रैंको सेड वी वांट टू हियर योर हार्ट.
और फ्रैंको ने कहा कि तुम्हारा दिल जो है हम उससे सुनना चाहते हैं.
आई फाइंड द एवरेज पास्टर इज नॉट हार्ड वर्किंग इनफ.
और मुझे लगता है कि जो औसत पासबान होते हैं वो काफी मेहनत नहीं करते.
With what we've been entrusted,
जो हमको सौंपा गया है,
and I'm not saying run around a frenetic trying to do stuff.
मैं ये नहीं कह रहा कि भाग दौड़ कर करके कुछ कुछ करने की कोशिश करें.
Carrying what God's given us,
जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको लेना है.
Because too often I hear,
अक्सर मैं ये सुनता हूँ,
my work's not going well.
मेरा काम ठीक से चल नहीं रहा क्योंकि मुझे ये नहीं मिला है, वो नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया.
We need to be fully committed to this task.
हमको इस काम के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध होना बहुत जरूरी है.
Amen. So we carry it.
तो हम इसको उठा के
चलते. I think it's Timothy, and he says he writes with tears.
और पौलुस तिमुथियुस को लिखता है और कहता है कि मैं आंसुओं के साथ लिख रहा हूँ.
He writes with tears. He's crying over this work.
और उसके काम को उसके बारे में सोच के वो रो रहा है.
I've heard people quote that scripture in 1 Corinthians 4, I think it is.
पहले कुरिन्थियों 4 के वचन को लेकर लोग कहते हैं.
I think this is God, so I'm going to go there quickly.
पहला कुरिन्थियों 4.
I just want to find it. I hope I can.
पहला क्रंथियो चार.
सो जाता है. Might be 2 Corinthians. Let me just see here. 2 Corinthians 4. Just want to find this. This is the problem when you.
2 Corinthians 4.
I just want to see here. Sorry, I haven't found it. The reason I left you in when I arrived in Troas. Where is that? It's here somewhere. Sorry, I just want to find this.
Search in smartphone.
Sorry, somebody find that for me quickly. So he's saying, when I arrived in Troas, I found that the... Oh, here we go. 2 Corinthians chapter 2, verse 12. 2 Corinthians chapter 2, verse 12. You can just translate as I say. You don't. He says, Paul wrote... When I came to Troas,
Paulus कहता है कि जब मैं ट्रोआस में आया.
Remember the movie Troy that was made some years ago? Did you see that movie? Troas, okay, in Paul's day. When I came to Troas to preach the gospel of Christ,
जब मैं ट्रोआस में यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने आया,
even though a door was opened for me in the Lord,
मेरे लिए प्रभु में एक दरवाजा खुला हुआ था, फिर भी
my spirit was not at rest because I did not find my brother Titus there.
मेरी आत्मा में शांति नहीं थी क्योंकि मेरा जो भाई तितुस वहाँ पर नहीं था.
So I took leave of them and went to Macedonia.
तो फिर मैं वहाँ से निकलकर मकदूनिया की ओर चला गया.
Paul arrives in Troas.
Paulus Troas में आता है.
There's opportunity to preach the gospel. There's faith. There's everything's there.
प्रचार के लिए मौका है, दरवाजा खुला है, सब कुछ है.
But his heart's not at rest.
लेकिन उसके दिल में शांति नहीं.
Because Titus is not there.
क्योंकि तीतुस वहाँ नहीं है.
You think why?
क्यों ऐसा क्यों है?
Was it because he didn't want to minister alone?
क्या वो अकेले सेवकाई नहीं करना चाहता था?
But yet there were other times when Paul was alone and he was very capable.
लेकिन दूसरी जगह हम देखते हैं पौलुस अकेले सेवकाई कर रहा है बहुत असरदार तरीके से.
Actually, why he left?
पता है क्यों चला गया वो?
Because he had written the first letter to the Corinthians, to the Corinthian church.
क्योंकि उसने पहले कुरिन्थियों में कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी.
Who had taken the letter to Corinth?
और कुरिन्थ में वो चिट्ठी लेकर कौन गया था?
Titus.
तीतुस गया था.
So Titus takes this letter, which is like a big ram. He says, "Should I take up my whip? It's like a big stick."
और तीतुस जैसे ये चिट्ठी लेकर गया, जैसे छड़ी थी वो पौलुस की कुरिन्थियों के लिए.
Titus takes it, has to work through all the implications of 1 Corinthians.
और तो तीतुस लेकर गया है सारा जो लिखा है.
Sexual immorality.
और यहाँ पे व्यभिचार के बारे में लिखा था पौलुस ने.
You're fighting over Apollos and Paul, principles of marriage.
और आप जो विवाह के सिद्धांतों के ऊपर और आपस में लड़ रहे हैं इसके ऊपर लिखा था.
Lawsuits against brothers.
और भाई एक दूसरे के साथ में.
He really takes them to task as a church.
और उस कलीसिया के ऊपर पौलुस बहुत ही कठोरता से उनको बता रहा है.
Paul cannot minister in Troas.
पौलुस तब त्रोआस में सेवका नहीं कर पाया.
Because he is carrying Corinth in his heart.
क्योंकि अपने दिल में.
And when he gets there,
कुरिन्थ उसके दिल में.
He wants to hear how Corinth has received apostolic instruction.
तो फिर वो ये सोच रहा है कि कुरिन्थ में जो उसने भेजा है उसके निर्देश को कैसे उन्होंने लिया है.
Titus is not there.
तीतुस वहाँ नहीं है.
The young man stopped at cafe coffee.
और वो कैफे कॉफी डे में रुक गया.
कैफे कॉफी डे. हाय यंग पीपल. And so Paul says, "Listen, I'd love to preach the gospel to you. I'd love to minister to you."
और पौलुस कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्रचार करके.
But such is my concern for the church.
लेकिन कलीसिया के लिए मेरी इतनी चिंता है.
That he goes off. Where did he go to?
वो कहाँ चला जाता है?
Macedonia.
मक्सुनिया को जाता है.
Travels all the way up.
और
Where's Titus? Anybody seen Titus?
और तीतुस कहाँ?
Where he is? Where have you been?
कहाँ चला गया तू तीतुस?
And then he gets the report.
और फिर उसको रिपोर्ट मिलती है वापस.
Things to celebrate.
और फिर खुशी की बात.
Brothers and sisters, I don't want to put a heavy workload on you. That's not what I'm saying at all.
भाइयों और बहनों में आपको नीचे नहीं करना चाहता.
But I want you to discover something that what we have is a life and death. Message.
हमारे पास जो है वो संदेश मौत और जिंदगी का है.
It's a life and death message.
और ये मृत्यु और जीवन का संदेश है.
That's what's being put in our hands.
और यही हमारे हाथों में दिया
you're
गया
not,
है.
You're not playing church.
आप एक खेल खेल नहीं रहे कलीसिया का.
You're carrying. You've been entrusted with the gospel from Jesus for your village or your city or your area.
यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार का संदेश आपको सौंपा गया है आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके क्षेत्र के लिए.
That's why people died.
और इसीलिए लोग मर गए इसके लिए.
It's tough.
बहुत मुश्किल है.
This year we had our first grandchild born.
इस साल हमारा पहला जो
beautiful little girl Leah,
हमारी पोती का जन्म हुआ.
It's tough.
और बहुत मुश्किल है.
At the time we know the baby's coming.
जब बच्चा आने वाला है.
We are moving further away.
हम और ज्यादा दूर जा रहे हैं उनसे.
So I've only seen her once.
और मैंने एक ही बार उसको देखा है.
Very little.
वो बहुत छोटी सी थी.
But in the mornings, because I'm an early person, I'd get up.
मैं सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ.
Knock on the parents' door.
मैं माँ बाप के उनके खटखटाता दरवाजे पे.
She awake yet.
और वो उठी भी नहीं होती थी.
I'm a babysitter.
और मैं उसकी देखभाल करना चाहता था.
Thank you. Thank you. They've been up all night.
और मैं उसको लेकर बैठता था.
Wrap her up.
उसको लपेटा हुआ.
I'd go for a walk on the farm or down not too far away just in case she needed mommy.
और उसको लेकर फिर मैं बाहर शहर के लिए निकल जाता, बहुत दूर नहीं जाता अगर उसको शायद जरूरत पड़ती अपनी माँ की।
Tell her what we're doing for the Lord.
और प्रभु के लिए हम जो कर रहे हैं मैं उसको बताता।
Why we aren't there?
हम वहाँ पे उसके साथ क्यों नहीं हैं?
Why we moving?
हम क्यों आगे और दूर जा रहे हैं?
We'll see her soon again.
कि हम बहुत जल्दी उसको दोबारा मिलेंगे।
Because the gospel of Jesus Christ.
क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार।
In a moment, most probably after lunch, I suppose we're going to come to those words, the reason I left you.
और खाना खाने के बाद हम जाएंगे कि मैंने तुम्हें मैं छोड़कर तुम्हें क्यों गया?
Paul was under orders.
पौलुस आदेश के नीचे था।
When we're under orders, we respond differently.
जब हम आदेश के किसी के नीचे होते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया अलग होती है।
We respond differently than when it's just a task.
हम अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं जब सिर्फ एक काम करना हो उससे।
It causes you to soak in the word of God.
फिर वो आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में डाल देते हैं। वो आपसे प्रार्थना कराता है, प्रार्थना करना चाहते हैं।
It causes you to move when you ask to.
जब आपको बोला जाए बढ़ने के लिए तो आप बढ़ना चाहते हैं।
When we're under orders,
जब हम आदेश के नीचे होते
हैं। I love history when I get a chance to read.
मुझे इतिहास बहुत पसंद है।
It's a beautiful letter written by the President of the United States, a very godly and a good man, Abraham Lincoln.
अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है।
He knew his success in the Civil War in America rested on the grace of God.
और वो जानता था कि अमेरिका की जो लड़ाई जो युद्ध था परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर था।
And he had a few really pathetic generals in his army.
उसकी सेना में कुछ बहुत ही बुरे जनरल भी थे।
Men who just wouldn't get on with the fight.
और वो लोग जो युद्ध में आगे बढ़ नहीं रहे थे।
But finally, this man arose.
और फिर एक जो इंसान है,
an unusual man.
और ये जो असामान्य इंसान था।
What a scruffy man.
और काफी I don't know how do I translate.
Scruffy, like Franco's beard.
बहुत साफ सुथरा नहीं था।
Poor Franco. But this man. So all the other generals were more concerned on how they looked.
तो बाकी के जो जनरल थे वो इस बात में ज्यादा दिलचस्पी की कैसे दिखाई दे रहे हैं।
All their braid and their badges and their buttons.
उनके बैजेस और उनके सितारे सब अपनी अपनी जगह से सही है या नहीं?
There's a picture of this one general standing there. It's amazing. Then you get this man, Ulysses Grant.
और फिर आपको ये मिलता, ये इंसान आता है Ulysses Grant,
he was up for a fight.
और वो युद्ध करने के लिए तैयार था।
He seems standing there.
और वो वहाँ पर खड़ा है।
His jacket's unbuttoned.
और उसके जैकेट के बटन खुले
हैं। He looks a bit like Franco. He's got his beard.
वो Franco की तरह दिखता था, दाढ़ी बड़ी हुई थी।
You look at his eyes.
और आप उनकी आंखों में देखते हैं।
He's tired.
और वो ऐसे थका हुआ लगता है।
There's belief.
लेकिन विश्वास
है, commitment,
एक वचनबद्धता है,
purpose,
और एक उद्देश्य है।
Heading my notes again. And one day,
और एक दिन,
he gets this letter from Abraham Lincoln.
अब्राहम लिंकन से उसको एक चिट्ठी मिलती है। एक घोड़ा आता है।
Off comes a guy.
और एक आता है इंसान।
General Grant.
और जनरल ग्रांट।
He opens it up.
और वो खोलता है।
Dear General Grant, I can't remember the exact words.
और प्रिय जनरल ग्रांट, शायद ऐसे ही कुछ शब्द होंगे।
I need you to gather your army.
मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सेना को इकट्ठा करो।
And cross the Potomac River, whatever it was.
और उस नदी के उपार करना है।
And I want you now to push on towards Charleston.
और मैं चाहता हूँ कि तुम चार्ल्सटन की तरफ अब आगे बढ़ चलो।
And it's the most beautiful response from this general.
और ये जो जनरल की जो प्रतिक्रिया थी, वो लिखता है।
Dear President Lincoln.
और प्रिय राष्ट्रपति लिंकन,
I understand that.
मैं समझता हूँ इस बात को।
I will overcome the shortcomings that I face in doing that.
जो भी इस करने
में, words, it's not your problem, it's my problem. I'm the general.
जो भी रुकावट है मैं इसको पूरा करूंगा, ये तो आपकी नहीं मेरी समस्या है।
Bottom,
और नीचे लिखता है,
is written, yours to count on.
और वो कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो।
General Ulysses S. Grant.
और नीचे अपना नाम लिखता है General Ulysses S. Grant.
Beautiful response.
बहुत ही सुंदर.
When I read that, I thought, Lord, when you called us here, I wanted to give up ministry at the time.
और प्रभु जब तूने मुझे बुलाया, जब उस समय मैं सेवकाई को छोड़ना भी चाहता था.
I could never write that to Jesus.
मैं यीशु के लिए कभी ये लिख नहीं सकता था.
Yours to count on.
कि तू मुझ पर भरोसा कर सकता है.
We were finished. Could never say, Jesus, you called me here. Yours to count on.
और यीशु तू मैं वो हूँ जिस पर तू भरोसा कर सकता है. और आज मैं आपसे पूछ सकता हूँ.
With what Jesus has put in your hand.
यीशु ने आपके हाथों में जो डाला है.
Can he count on you?
क्या वो आप पर उसके लेकर भरोसा कर सकता है?
Can he count on you?
क्या वो भरोसा कर सकता है उसको लेकर आप पे?
Can your brothers and sisters sitting next to you?
आपके भाई बहन जो बैठे हैं आपके पास, क्या वो आप पे भरोसा कर सकते हैं?
जी जी. Good man. Can we count on you to establish the best church ever in Orissa? Can we count on you brothers from Harvest of Grace?
क्या हम Harvest of Grace के लिए आप पे भरोसा कर सकते हैं?
Ryan, others, Nigel and Deza in Japan at the moment. Let's hope they plant a church for us. Nigel, if you do listen to this message when you come back and you haven't planted a church, I hope that you have terrible guilt for a whole week. But can we count on you?
क्या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं?
As we spread out.
और जैसे हम फैलते हैं.
As you pick up your task.
और जब आप अपने काम को वो दोबारा से लेते हो हाथों में.
I looked at the photographs earlier from I don't know where it was. Sorry, the school. What's it called? Oh yes, Progress School. Eh, is that right? Eh.
Pragati School, Melanie ki.
And I looked at this and listened to Melanie and what John was saying, and I thought, don't have to worry about this work.
और जब मैंने उनसे ये कहानियाँ सुना तो मुझे लगा मुझे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है.
They've got it.
और उनको मिल गया है क्या करना है वो समझ चुके
हैं. How we need to live.
ऐसे हमको जीना है.
Are you using what God's put in your hand?
जो ये प्रभु ने आपके हाथों में डाला है क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं?
The general that was before.
जो जनरल
Ulysses Grant.
Ulysses Grant के पहले जो जनरल था.
He got a different letter.
उसका उसको अलग चिट्ठी मिली थी.
Where's my letter gone? Did I give it back to you? Sorry, his I might as well keep my letter. I didn't give it back. Where's my letter? This is it. Yes, it is. He got a different letter.
उसको अलग चिट्ठी मिली थी.
He had the finest uniform.
उसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म उसने वर्दी पहनी थी.
Equipped army.
और बहुत ही अच्छा तैयार लैस थी उसकी सेना.
He had everything he needed for success.
वो जो भी सफलता के लिए चाहिए था वो सब उसको मिल दिया गया था.
I'm totally blank. Sorry, McClellan, thank you very much. You weren't even there, or did you listen to my message? Ah, Nigel, what a good man. You see, Nigel's a good New Testament leader. General McClellan, he had everything. He had the best moustache.
General McClellan के पास सब कुछ था. उसकी सबसे अच्छा बढ़िया मूछें थी.
He had more selfies of himself taken by someone else than anybody else.
और कोई उसकी जितनी सेल्फी ली गई किसी की नहीं ली गई होगी.
Go on the internet and type in General McClellan.
और आप इंटरनेट पे जाके जनरल मैकमिलन के ऊपर आप खोज कीजिए.
He's got that way.
और इस तरीके से उसकी तस्वीर है.
He's got that way.
ऐसी है.
That way.
इस तरीके
से. He's got with his wife.
अपनी पत्नी के साथ.
But you know the one thing. He wouldn't fight.
लेकिन आपको एक बात पता है वो लड़ नहीं सकता.
And one day the rider there, the same guy.
और फिर वो घोड़ा लेकर आता है.
General McClellan, sir, this is for you from President Abraham Lincoln.
General McClellan, आपके लिए राष्ट्रपति लिंकन की चिट्ठी है.
You are fired.
आपको नौकरी से निकाला गया है.
Your command has been taken away from.
आपके पास से आपके अधिकार ले लिए गए हैं.
The parable of the talents.
और जो तोड़ों का दृष्टांत है.
Lord, here's the talent you gave me.
हाँ, तूने मुझे दिया था.
I buried it in the ground because I didn't want to lose anything.
मैंने धरती अंदर दबा दिया था क्योंकि मुझे खोने का डर था.
You evil servant.
और तू दुष्ट सेवक.
Takes it away from him.
उससे ले लिया गया.
Let me find someone who's faithful.
और कोई और जो विश्वास योग्य है उसको दे दिया गया.
God's going to call us to some difficult places.
परमेश्वर हमें कुछ मुश्किल जगहों पे जाने के लिए बुलाएगा.
Will you surrender when the fighting gets tough?
जब लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है तब आप क्या समर्पण कर दोगे?
Titus, my true child.
तितुस, मेरे सच्चे पुत्र.
Father God,
पिता परमेश्वर,
we stand in awe of you.
हम तेरे भय में खड़े होते हैं प्रभु.
That you would entrust to us such amazing responsibility.
तू हमें इतनी महान जिम्मेदारियों को सौंप सकता है.
We feel so inadequate at times.
हम अपने आप को कितना कम महसूस करते हैं प्रभु.
So unable, so ill-equipped.
कितने अयोग्य हैं, तैयार भी नहीं हैं.
But yet,
लेकिन फिर भी.
You said you'd never leave us or forsake us.
तूने कहा कि तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं.
You said we need but ask and you will give it to us.
और जब हम मांगेंगे तो तू हमें देगा प्रभु.
I pray that you'd put in our hearts hearts of Paul the apostle.
और
servant.
मांगते हैं कि हमारे दिलों में उस आग को डाल जो पौलुस के थी प्रभु.
We know what we why we do what we do.
कि हमको पता होगा जो हम कर रहे हैं,
we know what we've been entrusted with.
जो हमें सौंपा गया वो हमें पता होगा प्रभु.
Change our hearts and our lives.
हमारे दिलों को जीवनों को बदल प्रभु.
Help us understand the urgency.
हमें इस तुरंत करने वाली बात को समझने की मदद कर इन दिनों में प्रभु.
Please bless us as we have lunch.
हमें आशीष दे जैसे हम खाना खाएं.
As we come back together, Lord, I pray we would be an army in the making.
जब हम वापस आएं तो परमेश्वर हम एक सेना में हो प्रभु जो तैयार हो रही है.
In Jesus' name, I pray this.
यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ.